नमस्ते। सावित्री व्याख्यान माला जो हम लोग सावित्री वेदा के नाम से प्रारंभ कर रहे हैं, ये व्याख्यान माला नहीं है, ये एक आमंत्रण है। और आमंत्रण है सावित्री को पढ़ने का, रसपान करने का, सावित्री में डूबने का। सावित्री को समझना वो डूबने के बाद आता है। ये इसका एक लॉजिक बड़ा विचित्र है कि जो इसमें डूब जाता है वो समझ जाता है, और जो समझने की चेष्टा करता है वो सतह पर रहता है। दूसरा, ये आमंत्रण है श्री अरविंद ने जो अद्भुत भविष्य के लिए हम लोगों को दर्शन दिया है, और पृथ्वी के लिए एक ना केवल संदेश दिया है, उन्होंने एक मार्ग दिखाया है और एक लक्ष्य रखा है। तो ये पहली बार कम से कम कॉन्शियसली, पिछले अगर हम हजारों वर्ष देखें तो पहली बार एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें पृथ्वी के समुचित कल्याण की बात हुई है, जो श्री अरविंद हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। नहीं तो श्री अरविंद के पहले मनुष्य के पास दो विकल्प थे। एक, संसार में रहो, सांसारिक जीव बन के जैसा संसार है, और संसार में एक दूसरे की परस्पर मदद करो, क्योंकि ये अच्छी बात है करना, ये एक लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि संसार अपूर्ण है, अपूर्ण रहेगा, तुम कितना भी कुछ कर लो। तो तुम्हारे लिए एक संभावना है कि तुम इससे बाहर चले जाओ और किसी निर्वाण में जाकर अपने आप को पूरी तरह आत्मसात कर दो। तो ये दो संभावनाएं थीं। कुछ लोगों ने इनको जोड़ा कि पहला जीवन, सांसारिक जीवन, तैयारी है निर्वाण के लिए या मोक्ष के लिए। तो उसमें हम देखते हैं कि जो व्यवस्था आई कि चार आश्रम हैं, चार पुरुषार्थ हैं, कि जीवन को इस तरह से जीते हुए अंत में मोक्ष संन्यास, तो ये एक तैयारी है उसके लिए। तो ये मनुष्य के पास दो विकल्प थे, और जैसा कि हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों ही अपूर्ण हैं। क्योंकि अगर हम केवल संसार में सांसारिक जीव बन के रहते हैं, बिना किसी उच्च आदर्श के, बिना किसी उच्च अभिप्सा के, तो कहीं ना कहीं हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम एक सीमित बद्ध मनुष्य की तरह जिएंगे, और कौन पराधीनता में सुखी रह सकता है। और यदि हम केवल निर्वाण का आदर्श लेकर चलते हैं, तो मोक्ष का आदर्श लेकर चलते हैं, व्यक्तिगत मोक्ष का, तो भी वो कहीं ना कहीं अपूर्णता है। क्योंकि वे लोग जिनको हम छोड़ रहे हैं, वह संसार जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो किसकी सृष्टि है, वे कौन हैं? यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो सब भी तो एक ही का संप्रसारण है। तो श्री अरविंद पहली बार संसार के सामने एक पूर्ण आदर्श, पूर्ण लक्ष्य, पूर्णता का लक्ष्य वो सामने रख रहे हैं। केवल आंतरिक पूर्णता नहीं, बाहरी पूर्णता भी, और विश्वव्यापक पूर्णता, चराचर जगत की पूर्णता, और उसमें हमारा व्यक्तिगत रोल। तो एक नया लक्ष्य है, और जब नया लक्ष्य होता है तो उसके अनुरूप पथ प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्य कभी ग्लिम्स नहीं किया गया, दूर से ग्लिम्स किया गया, देखा किसी ने, लेकिन कहा वहां पहुंचना असंभव है। जैसे किसी ने, मान लो इसका मैं उदाहरण भी देता हूँ, कई बार दार्जिलिंग में टाइगर पॉइंट पर चढ़कर कोई कंचनजंगा को दूर से देखे, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ऐसे बिल्कुल ट्रायंगल है और उस पर स्वर्णिम आभा, और देख के लोग आनंदित हो जाते हैं, उसके बाद सब अपने कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि कंचनजंगा जाना है, अरे ये तो असंभव बात है, यहाँ देख लिया बहुत बड़ी बात है। तो ग्लिम्स किया है मनुष्य ने, कहीं कहीं उसके अंदर एक संसार भी उतना ही सुंदर बने जितना कि भगवान सुंदर हैं, ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका है कि संसार असुंदर है इसलिए भगवान नहीं है। ये दो दृष्टि हैं, डिपेंड्स कि हम किसको देख रहे हैं। हम संसार को देखें केवल तो हम ये कहेंगे कि जो बनाने वाला है वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन यदि हम भगवान को देखें तो हम कहें वो तो सुंदर है, ये ऐसा क्यों है। श्री अरविंद इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये कि सृष्टि अभी पूर्ण नहीं है, आधी अधूरी है। आधी अधूरी देख करके दुर्गा की प्रतिमा को हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि ये तो ये बनाई है दुर्गा की प्रतिमा, तो जो शिल्पकार है क्या कहेगा, कुछ दिन प्रतीक्षा करो भाई। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद का महावाक्य है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग। अब ये चीज कहीं नहीं लिखी हुई है, कहीं पर भी हम जाएं, वेदों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि गीता में, पुराण है, इतिहास है, रामायण है, महाभारत में, अब कहीं दूरगामी एक हिंट है इसका, लेकिन कुछ किस्से कहानियों में कहीं ना कहीं हिंट है कि मनुष्य के अंदर ऐसी संभावना है, हनुमान जी उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब संभावना है कि शरीर हमारा इतना लाइट हो जाए, इतना विशाल हो जाए, लेकिन ज़्यादातर ये वाइटल प्राण जगत की शक्तियों के बारे में कहा जाता है, गरिमा, लगिमा, महिमा, अनिमा, व्याप्ति इत्यादि। किंतु क्या ये भौतिक स्तर पर संभव है? तो उत्तर मिलता है नहीं। तंत्र में कहीं कहीं इसका प्रयास हुआ, लेकिन ये सब इतना बिखरा हुआ है, इतना दूर का हिंट है, जैसे बात हुई कि अधिक से अधिक आप टाइगर हिल पर खड़े होकर कंचनजंगा को दूर से देख रहे हैं। तो शेरविंद बताते हैं कि ना केवल मनुष्य ट्रांजिशनल बीइंग है, मनुष्य के आगे कुछ और आने वाला है, और जो आने वाला है वो मनुष्य से निश्चित रूप से बेहतर होगा, ये आवश्यक है, क्योंकि पशु से मनुष्य आया, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाल में अभी जो कल वीडियो देख रहे थे कि हाथी को जैसे मनुष्य ने मारा कहना, और वहीं पर हाथी ने जैसे मनुष्य को बचाया, कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मनुष्य निश्चित रूप से इवॉल्व बीइंग है क्या, या वो पतन है। और एटलीस्ट ज्यूइश मिथोलॉजी में तो यही माना गया है कि मनुष्य का पतन, मनुष्य बनना माने पतन हुआ है, आपकी इनोसेंस जो है, आपकी जो सहज स्वाभाविक दिव्य गति है, उसको आपने लूज किया है, क्योंकि माइंड आ गया है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य एक मध्यवर्ती अवस्था है, और मनुष्य के परे एक दिव्य मानव प्रकट होगा। अभी हम लोग अर्ध मानव हैं, अपूर्ण मानव हैं, या पशु मानव हैं, जो भी हम कह लें, परंतु इसके आगे दिव्य मानव है। अब दिव्य मानव प्रकट होगा तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है, तो हम कैसे जाने कि क्या है? तो एक तरीका है कि हम श्री अरविंद श्रीमाता जी का सारा लिटरेचर पढ़ें और जीवन जीने की चेष्टा करें। तो ये तो एक तरीका है, जीवन काल में कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, कितने प्रेरित होंगे। दूसरा तरीका है कि हम एक कोई किताब पढ़ें, तो एक किताब सावित्री है। इसको अगर हम भारतीय उससे देखें तो वेदों में कहा जाता है कि सब कुछ है, मूल रूप से सब कुछ है, वही वेदों का ज्ञान रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, गीता में अलग अलग ढंग से प्रकट हो रहा है। ये भी हमको समझना है कि वेद केवल एक लिखी हुई पुस्तक नहीं है, हर एक चतुर्युग के अंत में प्रलय होती है, प्रलय के समय वेदों को लेकर पानी के नीचे चला जाता है कोई असुर, वो भी भगवान की प्रेरणा से, फिर भगवान आते हैं। इस चतुर्युग में दशावतार हैं, हमें नहीं मालूम कि दूसरे चतुर्युग का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वो विलुप्त हो गया है सारा, लेकिन वो फिर असुर को का संहार करते हैं वेदों को निकाल करके। जो अब इस चतुर्युग का जो मनु होगा, नया मनु, 14 मनु है, तो ये इस युग के मनु है, श्रद्धावान मनु, तो श्रद्धा स्पेशल चीज है, उनको वो वेद पकड़ाते हैं। यानी वेद कोई पुस्तक नहीं है स्पष्ट रूप से, पानी में जाकर के एकदम वो डिजिटल कॉपी भी नष्ट हो जाएगी। वेद वो सार रूप में वो ज्ञान है, सीक्रेट नॉलेज, जो हम मन से नहीं जान सकते, हम इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी वो ज्ञान अपने मूल रूप में रहेगा। उसी ज्ञान के आधार पर सृष्टि होती है, और उसी ज्ञान से अपने आप को संबंध जोड़ना, उसके अनुरूप जीवन जीना, इसी को सनातन धर्म कहा गया। थोड़ी देर पहले इसकी बात हो रही थी, एक होता है लीगल के हिसाब से चलना, नैतिकता के हिसाब से चलना, कुछ आदर्शों के हिसाब से चलना, मूल्यों के हिसाब से चलना, ये सब छाया है, असल चीज नहीं है। असल चीज है कि सनातन सत्य के अंदर जो भगवान का संकल्प है उसके साथ अलाइन करना और उसके हिसाब से चलना। अब इसका टिपिकल एग्जाम्पल आता है भगवद गीता में, अर्जुन का नैतिक और आदर्श, जीवन के आदर्श मूल्य, ये सब कहते हैं कि तू शस्त्र नहीं उठा, तेरे दादा हैं, तेरे नाना हैं, मामा हैं, चाचा हैं, स्वजन हैं, लेकिन भगवान का संकल्प है कि तू शस्त्र उठा और संहार कर। ये देखिए, अब क्यों अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं संहार करने के लिए? क्योंकि ये संकल्प है। क्यों ये संकल्प है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो मार्ग में खड़े हैं एक नई सृष्टि के आगमन के लिए। इसका व्यक्तिगत कोई, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट, इट इज द डिवाइन विल, नॉट बिकॉज ये अच्छे हैं बुरे हैं, ये बात ही नहीं है। उस समय पांडवों के तरफ भी बहुत बुरे लोग थे, बात बुरे अच्छे की नहीं थी, बात है कि अगर ये लोग खड़े रहेंगे तो जो नई सृष्टि में लाना चाह रहा हूं वो संभव ही नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि एक कल्प के बाद जब भगवान वेदों को डुबोते हैं फिर निकालते हैं, तो कारण क्या होता है? क्योंकि उनके जो मूलभूत सत्य हैं वो धीरे 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 इन प्रैक्टिस वो चेंज होते जाते हैं, वेदों का कर्म कांड बन जाता है, तो एक बुद्ध की आवश्यकता होती जो उसको तोड़े। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप उपनिषदों को पढ़ें, खासकर एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, तो वो तो कहती है कि वो तीन जो वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तो लोअर नॉलेज, स्पीक्स लाइक दैट। गीता कहती है कि जो ब्रह्म को जान गया उसके लिए वेदों का मूल्य उतना है जितना एक लुटिया में पानी का। तो क्या श्री कृष्ण और उपनिषदों के ऋषि वेदों को डिमीन कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि वेदों का दो रूप है, एक है उसका मूल स्वरूप जो हमारे अंदर है, वो इटर्नल वेदा है, वो कभी विनाश हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा रूप है जो उसके प्रकटन का रूप है। आप भगवान हैं, आप भगवान अंदर हैं, अब बाहर आप उनको कैसे ट्रीट करते हो? अगर आप जाएंगे उज्जैन के मंदिर में तो वहां भगवान भैरव हैं जिनको शराब पिलाते हैं लोग, वो भी भगवान है, भगवान मान, बाहर कोबरा नाचता है, यह है वो एक तरीका है। वो अगर आप उनसे पूछेंगे कहेंगे हमारी ये पूजा है, और जब वो प्रसाद मिलता है आपको पीना होता है, आप मना करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे पुजारी, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। तंत्रों में तीन प्रकार की पूजा बताई गई ना, एक है जो बिल्कुल बाहरी है जो पशु समान है, दूसरी है जो मनुष्य के योग्य है यानी मानसिक, और तीसरी है जो देव गुण के योग्य यानी आध्यात्मिक। तो ये तीन प्रकार के पथ हैं। तो जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वही भगवान एक अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, और इन सब की जगह है, ये नहीं कि ये होना चाहिए, क्योंकि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है लोगों की। तो जैसे जैसे वेदों के अंदर जो प्रोफाउंड ट्रूथ्स हैं उनका ह्रास होता है धीरे 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 कालांतर में, क्योंकि वो किताब पढ़ने से तो नहीं रह सकता है, उसको रियलाइज करना होता है। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जगह जगह, लेकिन भारतवर्ष कस्टोडियन है इसलिए हम लोग जूम इन करेंगे भारतवर्ष पर, ऐसे ऋषि मुनि आते हैं जो उसी ज्ञान को फिर से नए ढंग से प्रकट करते हैं। वो कहते नहीं है, जैसे अब कबीरदास जी ने इतने सुंदर बातें कही हैं, तो वो कहते क्या है, जो बोलूं सो वेद कहावा, जहां पग धरूं सो तीरथ, जो मैं कहता हूं वही वेद है। अब वो अहंकार में नहीं कह रहे, कह रहे मेरी वाणी तो स्वतः स्फूर्त भगवान की वाणी, अब मैं क्या करूं। अब उन्होंने कैसे वेदिक ट्रुथ को कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, उलट बासियों के थ्रू। कहते हैं कि केश मुड़ाने से यदि भगवान मिल जाते तो मैं केश मुंड लूं, पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ को पूजूं, दाढ़ी बढ़ाने से भगवान मिल जाते तो बकरे को मिल जाएंगे। अब ऐसे उन्होंने, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि दाढ़ी मत बनाओ या वो नहीं, वो कर सकते हो आप, लेकिन भगवान तो सिंसेरिटी से मिलेंगे ना, आपके अंदर सिंसेरिटी है तो ये सब ठीक है, सिंसेरिटी नहीं है तो आप ये सब कर लीजिए लेकिन नहीं मिलेंगे। तो उस समय के अनुसार वो उसी वेद को, उस प्रोफाउंड ट्रुथ को, कि ये सीक्रेट नॉलेज है, इसको किसी बाहरी तरीके से आप नहीं प्राप्त कर सकते, कबीरदास जी ने इसको इस प्रकार से प्रकट किया, और गुरु नानक जी और अनेकों जो लोग आए उन्होंने वैदिक ट्रुथ्स को ही, सनातन धर्म के ही सत्य को अलग अलग ढंग से प्रकट किया। लेकिन लक्ष्य क्या था? वही लक्ष्य था जो उन्होंने बताया कि मोक्ष। क्या वेद केवल मोक्षवादी है? नहीं, श्री अरविंद ये बताते हैं कि वेद मोक्षवादी नहीं है, वेदों के अंदर एक सत्य है जो इग्नोर हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वो सत्य क्या है कि हेवन एंड अर्थ मस्ट बिकम ट्रू एंड वन। जैसा स्वर्ग है, यहां स्वर्ग वो पुरानों वाला और टीवी चैनल वाला स्वर्ग नहीं, स्वर्ग यानी एक ऐसी उच्चतम अवस्था जहां सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुरम्य है, सब कुछ सामंजस्यपूर्ण है, सब कुछ स्वतः स्फूर्त ज्ञान से भरा हुआ है, सब कुछ प्रेम माधुर्य यही है वहां पर, तो वो जो अवस्था है। लेकिन धरती पर क्या है, सारे नोट्स डिस्कॉर्डेंट हैं, दो लोगों को एक घर में बंद कर दो, पता नहीं क्वारंटीन में लोगों ने कैसे रहना सीखा बिना झगड़ा किए, पता नहीं रियली रहे कि नहीं, होगा होगा झगड़ा, क्वारंटीन अच्छा मौका था इसको सॉर्ट आउट करने का। मनुष्य का स्वभाव है। तो वेदों में एक बताया गया कि मनुष्य को जीवन जीते हुए, यानी गीता भगवत गीता भी कहती है लोक संग्रहार, द फॉरवर्ड मार्च ऑफ मैनकाइंड, लेकिन क्या चीज बच जाती है कि ये मैनकाइंड का मार्च जा कहां रहा है। एक और कह रहे हैं इंडिविजुअल लिबरेशन, तो इसके कारण कंफ्यूजन आता है लोगों के माइंड में कि लिबरेशन ही है तो ये सब की क्या जरूरत है। तो यहां श्री अरविंद, वेदों के अंदर एक ट्रूथ है जो केवल हिंट किया गया है, संकेत है कि वो देखो कंचनजंगा है, जब लोगों ने कहा वहां चढ़ना है, देखो इंडिविजुअली चढ़ सकते हो, ग्रुप के साथ नहीं जा सकते हो। इंडिविजुअली कैसे जाएंगे, एक आता है चीता हेलीकॉप्टर, उसमें दो लोग जा सकते हैं। फिर वहां जाके क्या होगा, वहां उतर जाना, उतरने के बाद क्या होगा, ज्यादा देर जियोगे नहीं, हो गया कंचनजंगा आपका क्योंकि यू विल बी एक्सफिक्सिएटेड। तो अब देखा ये कैसे जाया जा सकता है, क्या कंचनजंगा को हम यहां क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चैलेंजेस जो हैं वो वेदों के अंदर इम्प्लिसिट हैं, एक्सप्लिसिट नहीं है। और इसीलिए अब उसी वैदिक ज्ञान को एक नए ढंग से, जो उसके अंदर कहीं छिपा हुआ है लेकिन वो कालांतर में वो प्रकट नहीं हुआ, जैसी बात हुई हिंट है इधर उधर, तो उसी ज्ञान को श्री अरविंद सावित्री के रूप में प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो सब कुछ है जो वेदों में है, तीनों वेद में जो है वो सब कुछ है। ऋग्वेद के अंदर जो ट्रू नॉलेज है वो फायर, वो अग्नि, जो अभिप्सा की अग्नि हमको कहाँ तक ले जा सकती है वो सब है, कैसे वो एसेंड करती है थ्रू प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस वो सब है। सामवेद की तरह इसमें वो भक्ति रस है जो मधुर वंडरफुल इंटोनेशन के थ्रू, सामवेद इज ऑल साम, इंग्लिश में भी यही वर्ड है, दे आर प्रेयर्स, ब्यूटिफुल मांत्रिक प्रेयर्स, मंत्र हैं वो, तो मंत्र है, मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सीमा ने बताया कि ये नए युग का मंत्र है। और यजुर्वेद में जिसको कर्मकांड, यज्ञ कैसे, यज्ञ के द्वारा कैसे हम जीवन जिए, तो इसमें वो भी है कि हम अपने जीवन को कैसे ट्रांसम्यूट करके डिवाइन जीवन हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको और सरल कर दिया गया। लोग कहते हैं सावित्री कठिन है, सावित्री सबसे सरल है। सरल किस सेंस में, सावित्री के पढ़ने मात्र से, सेवन मात्र से, ये माता जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया है, जैसे एक मंत्र को जब हम रिपीट करते हैं, अगर हम उसका गूढ़ अर्थ समझ के करें तो बहुत ही सुंदर है, परंतु गूढ़ अर्थ कई बार शाब्दिक अर्थ में नहीं आता है। अब इसका एक उदाहरण ले लें, गायत्री मंत्र से जिससे हम सब परिचित हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋषि किसको इन्वोक कर रहे हैं, सूर्य को, शाब्दिक अर्थ तो यही है ना सविता। तो जो केवल फिजिकल सिंबल देखते हैं वो कहते हैं ये क्या बात हुई, सूर्य से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी क्या? कोई जो विश्वासी हो कहेंगे हाँ सूर्य में अगर आप चलोगे घंटे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ये दोनों ही अज्ञान के दो छोर हैं। मैं नहीं कहता हूं नहीं बढ़ेगी, हो सकता है बढ़े रिसर्च करें तो, लेकिन यहां जिस सूर्य का संकेत है वो फिजिकल सूर्य नहीं है, फिजिकल सूर्य उसका सिंबल है। जो ट्रूथ है वो इटर्नल सन ऑफ नॉलेज, यानी सूर्य की के रूप में वो, उसको सूर्य की उपमा क्यों है, क्योंकि वो सर्वत्र है, सूर्य की तरह सब ओर देख रहा है। वो केवल प्रकाश नहीं है, वो तेज भी है, यानी उसके अंदर नॉलेज भी है, विल भी है, ओमनीसियंस भी है, ओमनीपोटेंसी है, दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। हम अलग नहीं कर सकते कि सूर्य के ताप को और सूर्य की प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो चेतना का एक स्तर है जिसको श्री अरविंद सुप्रामेंटल कहते हैं, और वैदिक ऋषियों ने जिसको महस महार भूमि कहा गया, स्वर नहीं, स्वर हाईएस्ट मेंटल हेवन है, कई लोग स्वर को महस समझते हैं। विज्ञान में लोग जिसको कहा गया, विज्ञान में किस सेंस में, वह जो ज्ञान इज द एसेंशियल नॉलेज, विज्ञान इज उसी का संप्रसारण सारी सृष्टि में, यानी सृष्टि के कण कण में वो ज्ञान है। अब देखिए कैसे वो ज्ञान है, कई लोग पूछते हैं कि ये क्या बात है कण कण में ज्ञान है। अब बताइए एक एटम को समझने के लिए वैज्ञानिकों को कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़े, कितनी किताबें लिखी गई, कितने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस हुए, वो सारी किताबें भी पढ़ के अंत में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम श्योर नहीं है कि ये एटम पार्टिकल है कि वेव है ना। एटम से पूछो तुम पार्टिकल हो या वेव हो, कहेगा मुझे मालूम है, ये बुक्स तुम्हारे लिए हैं, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, मुझे इतना मालूम है कि बाहर की मेरी ऑर्बिट में 2 या 8 रहेंगे तो मैं स्टेबल रहूंगा। ये तुम्हें किसने बताया, ये मेरे अंदर है, इनबिल्ट है है ना, ये ज्ञान। तो ये ज्ञान उस तरह का ज्ञान नहीं है जिसको हम किताबी ज्ञान समझते हैं। ये ज्ञान या विद यानी नॉलेज, ये वो ज्ञान है, वो प्रज्ञा है जो, और ये प्रज्ञा और ऑर्डिनरी ज्ञान में क्या अंतर है? ऑर्डिनरी ज्ञान में मेरा ज्ञान, तेरा ज्ञान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये प्रज्ञा विश्वव्यापक है। यानी वो एक इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे धरती पर है और एक सौरमंडल के आखिरी कोने में है, दोनों के अंदर ये कनेक्ट करके जोड़ रही है। ये भी वैज्ञानिकों ने बाय द वे शोध करके पा लिया है कि अगर यहां के इलेक्ट्रॉन को आप स्पिन दोगे तो चंद्रमा पे जो इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें काउंटर स्पिन आएगी, एम आई राइट? तो ये क्यों है? क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। ये ज्ञान विद्या है, यानी वो एकत्व के आधार पर है। हमारा ज्ञान भाई ठीक है, इसने कहा होगा, लेकिन मेरे अनुभव में ये क्या है? ये अज्ञान की भाषा है। मेरा अनुभव, तुम्हारा अनुभव, अज्ञान की भूमि पर अज्ञान की आंखों से किया हुआ अनुभव। जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, क्यों मैं नहीं देखता? तो तुमने तो न्यूयॉर्क नहीं देखा, तुमने तो बैक्टीरिया वायरस भी नहीं देखा। वायरस से सब डरे हुए हैं कि वायरस पक्का है। भगवान के बारे में देखो, सारे वैज्ञानिक बोलेंगे कि भगवान नहीं है। लेकिन ये सारे लोग जो कहते थे कि भगवान नहीं क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, वायरस से डरे हुए हैं, देख नहीं रहे। तो ये एक अलग प्रकार का ज्ञान है, ये विद्या है जो सारी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और वो सारी सृष्टि उससे निकल रही है। उसके अंदर हम कह सकते हैं ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। अब ये ब्लूप्रिंट धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिस्टॉर्ट होने लगता है, ये अनेकों हाथों से जाता है, इसकी जेरोक्स कॉपीज होती हैं, हर जेरोक्स कॉपी फेड होने लगती है। तो कालांतर में जब ओरिजिनल, हम कहें मालिक से, मैनेजर से, सुपरवाइजर से, प्लम्बर, सारा ये थोड़ा 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 डिस्टॉर्ट होते, जो बाहर बनता है वो कुछ और बन जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये नहीं मैं चाहता हूँ, ये तो गलत हो गया। तो वो फिर सृष्टि को प्रलय में ले जाके फिर से वो प्रकट करते हैं। अब वो चेष्टा ये रहती है कि अब अलाइंड ज़्यादा सही हो। तो प्रत्येक चतुर्युग में एक बेटर परफेक्शन की ओर वो जाता है, यानी ये चतुर्युग विल बी बेटर देन द प्रीवियस चतुर्युग, और आने वाला जो चतुर्युग होगा वो इससे भी बेटर होगा। यानी भगवान भी सीखते हैं ना, गलतियां सुधरती है। भगवान की मूल उसमें गलती नहीं है, लेकिन जो एक्सीक्यूशन है उसमें कई सारे प्लेयर्स हैं इन द वे मैटर और स्पिरिट के बीच में, और वहां गलतियां होती हैं, और वो आवश्यक है क्योंकि हर एक तत्व को भगवान जैसा बनना है। तो इट विल ग्रो थ्रू मिस्टेक्स, लर्न थ्रू मिस्टेक्स एंड एरर्स, दिस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये चूंकि ये इसकी पूरी वो हो जाती ग्लानी, तो श्री अरविंद फिर से उसको प्रकट करते हैं। प्रत्येक युग में आप देखिए कि वेदों को नए ढंग से प्रकट किया जाता है। जिसकी बात हुई, आप देखिए सतयुग के प्रारंभ में वेद है, फिर जब त्रेता का प्रारंभ होता है तो उपनिषद से, और जैसे मैंने कहा उपनिषद गॉड्स के रास्ते से नहीं जा रहे, वो कहते भगवान तुम्हारे अंदर है, प्राप्त कर लो। फिर द्वापर में भगवान कहते नहीं नहीं, एक मैं तुमको सिंपल तरीका बताता हूं, अंदर बाहर सब मैं हूं, मैं अवतार बन के आया हूं, चलो मुझे समर्पण करो, आई विल गिव यू, सिंपल हो गया। और अब शेरविंद कहते हैं कि वो तो है ही, मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डिजिटल एज है, मैं बुक दे रहा हूं। तो सावित्री के अंदर वही सत्य, यानी वो इजियर बना रहे हैं प्रोसेस को, और इजी बना रहे हैं। सबसे इजी तो है मां के नाम का स्मरण, ये सौभाग्य और भक्ति गिफ्ट है, ये मिलती नहीं है सबको। तो सेकंड इजी है सावित्री, इसके सेवन मात्र से हम वो ज्ञान की गांठ खुलने लगती है। कैसे खुलने लगती है? जैसे लोहा मैग्नेट से आकर्षित होता है, जैसे पुष्प के सामने अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए तो पुष्प क्या करेगा? खिलेगा। क्यों? उसका नेचर है। तो सावित्री जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भाग है जो इसको रिसीव करता है, पोइट्री की एक खासियत है, और रिसीव करता है तो खिलने लगता है। वो पार्ट कौन सा है? चैत्य सत्ता। लेकिन हमें केयरफुल क्या रहना है? सूर्य और फल और फूल और वृक्ष के बीच में, पौधे के बीच में लेयर्स मत डाल दीजिए। कुछ पेड़ हैं जो बिना लेयर्स के, छाया के नहीं ग्रो कर सकते, उनके लिए ठीक है। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनको, जो डायरेक्ट नहीं रिसीव कर सकते हैं, उनको छाया चाहिए। तो छाया कहाँ है? कि सावित्री एक तरफ रखो, डिक्शनरी भी रख के बैठ जाओ। इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवे। अच्छा, ये अवर मतलब श्री अरविंद किस अवर की बात करें? 2 बजे की बात करें या 3 बजे की बात करें? इस पर डिबेट और डिस्कशन करो। ये छाया असर करेगा, लेकिन वो छाया पुष्प है। दूसरा है, इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक। the huge foreboding mind of night alone in her unlit temple of eternity lay stressed immobile across silence marge. Almost one felt opaque, impenetrable. The somber symbol of her eyeless muse. अब देखिए इस शब्द को भूल जाइए, मीनिंग को भूल जाइए क्वेश्चन, इस पर जस्ट मेडिटेट अपॉन इट, सो पावरफुल. तो जब हम इसको ऐसे ग्रहण करते हैं, लेकिन एक वाया मीडिया भी है कि एक मोटा मोटी पता होना चाहिए कि क्या है, ताकि हम लोग, क्योंकि माइंड है ना, मनुष्य का एक्टिव है, वो कहेगा वो ठीक है, लेकिन थोड़ा तो एक रफली की किसकी बात हो रही है. तो यही प्रयोजन है ये टॉक्स का. ये कोई वर्ड मीनिंग और स्कॉलिस्टिक और एकेडमिक टॉक नहीं है, और वो होनी भी नहीं चाहिए. ये क्या है कि ताकि हमें ये पता हो जाए, हो एक रफ आइडिया कि अच्छा शेरविन किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन है, कौन सी रात है, इतना काफी है. किस रात की बात कर रहे हैं, कल रात की, परसों रात की, या उस महानिशा की जिसमें एक पूरे चतुर्युग के बाद सृष्टि डूब जाती है, या उस महानिशा की जहां से वो प्रारंभ होती है, निश्चेतना की अवस्था की, ओरिजिनल इनकॉन्शियंस या प्रलय के बाद. ये इतना ओरिएंटेशन काफी है, और थोड़ा बहुत कि प्रलय क्या है. तो जब एक बार हम ओरिएंट हो जाते हैं तो अच्छा ठीक है, बस इतना. ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है. तो सावित्री एक वेद है, वेदों की तरह इसमें मंत्रविद वाणी है. सीमा ने कहा थी इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सावित्री वेद रूप में भविष्य दर्शन है, और केवल भविष्य दर्शन नहीं है, उसको पढ़ने से हम मार्ग पे बढ़ने की ना केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि खुराक मिलती है, और वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है कि हमें किस तरह से इस रास्ते पर जाना है. जैसे वेद बताते हैं कि आपको अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, वेद कहते हैं अपने अंदर में अग्नि जलाओ. तो सावित्री वो सारा कार्य करती है. जब हम सावित्री पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की वो अग्नि जलने लगती है, और फिर धीरे 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 हमको पूरा इसमें रोड मैप दिया गया है कि जब तुम जाओगे तो क्या क्या देखोगे, कैसे देखोगे, कहाँ पे तुम भटकना नहीं, कहाँ पर देखना, थोड़ा एंजॉय करना, आगे निकल जाना, कहाँ पर भयानक चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पर क्या करना है, ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स एंड द ग्रेट नेम, और ये कहाँ जा रही है यात्रा. तो सावित्री इस युग में, जैसे प्रत्येक युग के अंत में या प्रत्येक चतुर्युग में जो एक युग है उसके अंत में एक वेदों को ही, वेदों के सत्य को एक नए रूप में भगवान प्रकट करते हैं, उसके अंदर छिपा कुछ था जो बाहर निकालते हैं, जो है कहीं. जैसे वेदों में डायरेक्ट अवतार की बात नहीं है, श्री कृष्ण उसको बाहर लाते हैं, सरेंडर की बात करते हैं. वेदों में सरेंडर की बात नहीं है, केवल एक दो जगह आपको मिलेगा ईश उपनिषद में कि अग्नि न सुपथार आए, मैं तुम्हें नमन करता हूं, इतना है सरेंडर. शो मी द पाथ टू द लाइट एंड द ट्रूथ, अदरवाइज इट इज नॉट सरेंडर, इट इज ओ गॉड्स इन्वोकेशन है. सरेंडर का भाव नहीं है, सरेंडर श्री कृष्ण है, बहुत छोटा मोटा, लेकिन श्री अरविंद श्री कृष्ण सरेंडर को प्रोमिनेंट बना करके लेके आते हैं. भक्ति रस जो वेदों में नहीं मिलता है, ज्ञान रस है, ज्ञान की गंगा है, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति रस वेदों में कर्म को कर्म कांड का रूप में दिया, यज्ञ रूप. एक्चुअली वो अंदर में कर्म का ही सीक्रेट है, लेकिन मनुष्य जैसे समझता है कि, और उस समय लोग करते भी थे, अग्नि वगैरह जला के प्रैक्टिस करते थे. अब आज के समय में तो आप घी वगैरह ऐसे नहीं डाल सकते ना, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें इमेजेस, अब वेदों में इमेजेस हैं बहुत सारी, अब वो इमेजेस अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. वेदों में इमेजेस है गाय की, गाय यानी गो प्रकाश, अश्व की, अश्व यानी शक्ति, यात्रा की बोट. तो अब अगर आप इमेज देखेंगे यात्रा की तो देखेंगे ट्रेन, हवाई जहाज, स्पेस क्राफ्ट, बिकॉज अब इमेजेस चेंज हो गई हैं. प्रिंटिंग प्रेस, म्यूजिक की बहुत सारी इमेजेस हम लोग देखेंगे. तो इमेजेस जो हैं ये समय के हिसाब से सिंबल्स यूज किए हैं श्री अरविंद ने. तो वेदों की लैंग्वेज में ये जो रहस्य हैं ये सिंबल रूप से दिए गए हैं, पार्टली इसलिए क्योंकि सिंबल ही एक माध्यम है जिससे हम समझा सकते हैं, क्योंकि वरना तो ये आत्मदर्शन है, या तो हम उसको डायरेक्टली देखें, और नहीं देखें तो इसको सिंबल के माध्यम से. लेकिन ये केवल सिंबल नहीं है, श्री अरविंद बताते हैं कि इसमें शक्ति भी है जो सिंबल के ट्रूथ को हमारे सामने प्रकट करती है. वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे इसमें प्रारंभ में ही श्री अरविंद एक ऑथर्स नोट देते हैं, सावित्री क्या है। बाहरी रूपरेखा से हम लोग परिचित हैं, सावित्री के तीन भाग हैं, पार्ट वन, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, ये अशुपति का योग है। श्री अरविंद के योग के ही अनुभव हैं, यानी श्री अरविंद ने कोई किताब में ये अनुभव नहीं पढ़े। ये सावित्री की स्टोरी तो बहुत छोटी है, उसमें बाहरी रूपरेखा है, लेकिन उसके जो श्री अरविंद के अनुभव हैं उन्होंने अशुपति के योग में दर्शा दिए गए हैं। ओरिजिनल स्टोरी में अशुपति तीन दिन का योग करते हैं, क्यों वो तपस्या करते हैं, ताकि वो उनको पुत्री चाहिए जो सारे संसार में कल्याण करे। फिर बुक पार्ट टू क्या है, सावित्री का योग जो प्रारंभ होता है बुक फोर से, चलता है बुक एट तक, बुक सेवन कह सकते हैं, बुक एट वो जब हम लोग आएंगे, कल हम लोगों ने इंग्लिश की उसमें इसकी बात की है, बुक एट क्या है, बुक एट कैंटो थ्री बुक वन के साथ भी चली जाती है, आप स्टैंड अलोन भी देख सकते हो, पर वो सावित्री का योग है। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ सावित्री में तीन दिन, अभी भी आप उड़ीसा में चले जाएंगे या नॉर्दर्न इंडिया में चले जाएंगे, वट सावित्री का व्रत होता है, तीन दिन का होता है, अभी उसका भी शॉर्टकट होने लगा है सब। ओरिजिनल व्रत, तीन दिन का व्रत करके आप हस्बैंड को काल से ही मुक्त हो जाए, ये तो टू मच है। तो जैसे ब्रह्मा का एक दिन, तो सावित्री के तीन दिन क्या हैं? ये इसमें सावित्री का योग ना जाने कितने दिन चलता है, और वो सारा योग विस्तार में कि वास्तव में उन्होंने क्या व्रत किया था, वो कौन सा वट वृक्ष है, वट वृक्ष क्या है, वो सृष्टि का प्रतीक है, कैसे सृष्टि का प्रतीक है, उसमें ऊपर से शाखाएं नीचे आने लगती हैं और नीचे जाके जमा हो जाती हैं, फैलता चला जाता है सृष्टि की तरह। अब आप जाके बाहरी वट वृक्ष उसका सिंबल है, वो ट्रू, इसलिए वो पूजनीय है, लेकिन अगर ओरिजिनल को भूल जाएंगे तो सिंबल का मजा समाप्त हो जाएगा। तो ओरिजिनल हैज टू बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज, ताकि वी मस्ट गो बैक। सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है एक सत्य को। तो ये दूसरी चीज है बुक टू, पार्ट टू। और पार्ट थ्री क्या है, बुक 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बुक्स है। पार्ट थ्री में सावित्री और ओरिजिनल स्टोरी में सावित्री यम का संवाद है। कितनी देर चलता है वो, बेसिकली फ्रॉम नाइट टिल मॉर्निंग या लेट नाइट, उसी दिन की बात है। वो यमराज लेके जा रहे हैं, सावित्री साथ साथ चल रही हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, यमराज इंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो एक ऐसा गुगली वाला क्वेश्चन होता है कि वो खुद ही उलझ जाते हैं, कह देते हैं सावित्री को कि शतपुत्र पुति भव, फिर सावित्री कहती है बैठाऊ, तो कहते हैं शादी कर लो, फिर से कहते हैं कैसे धर्मराज हो आप, तो अब क्या हुआ, वो धर्मराज जब वो कहती हैं तो वो यमराज को अपग्रेड कर रही हैं, रूपांतरण हो रहा है। तो यमराज शुरू में क्या कर रहे थे, मैकेनिकल लॉ, मुझे मारना, मैंने मार दिया, खत्म बात, टाइम आ गया था, फिनिश्ड। सावित्री उनको बता रही हैं आप यमराज बाद में हो, धर्मराज पहले हो, आपको जो काम दिया गया था वो धर्म को मेंटेन करना, इटर्नल लॉ। यमराज कौन है, सूर्य के ही पुत्र हैं, सूर्य और छाया, यानी वो जो ओरिजिनल ट्रूथ है उसको रिसीव नहीं कर पाएगा मनुष्य, तो एक इग्नोरेंस में यमराज छाया रूप में वो विद्यमान है। तो उन्होंने उस ट्रूथ को धीरे 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 डिस्टॉर्ट, अगर ओरिजिनल स्टोरी में जाएं, श्री अरविंद ने तो वो छाया ही है जो सूर्य की से लेती है सब कुछ, लेकिन चूंकि वो छाया है वो उसका रूप चेंज कर देती है, ये ओरिजिनल सेंस है श्री अरविंद के, उसमें डेथ इज द शैडो ऑफ गॉड, मिथ्या बना देती है। तो यमराज क्या कहता है, देखो सृष्टि का विधान है क्या, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, जो जन्मा है मरेगा। तो सावित्री कहती है पर मैं तो कॉन्शियस हूं अपनी इमोर्टैलिटी की, तो मेरी स्पिरिट की इमोर्टैलिटी मैं तो सबके लिए मांगूंगी। तो वो क्या करती, कहती कि मरेगा ये तो कह दिया आपने, आपने इसमें ये भी लिया अकाउंट में कि प्रेम भी हो सकता है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है बच्ची, मृत्यु ही सत्य है। अच्छा, एकमात्र सत्य है जीवन, कुछ नहीं है, अल्टीमेट मृत्यु ही सत्य है। क्यों, क्योंकि हर एक देवता अपने ही बखान करता है ना कि मैं ही हूं, तो मृत्यु तो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो सावित्री कहती है कि मृत्यु से पहले भी बड़ा सत्य कौन है, प्रेम। क्यों मृत्यु से भी बड़ा सत्य है, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं पहला ही कैंटो सावित्री का कि भगवान प्रेम जब सृष्टि के अंदर महाअंधकार की अवस्था हो जाती है तो सृष्टि के अंदर से एक पुकार जाती है और जगन माता अपने ही हृदय का सबसे अद्भुत भाग अपने हृदय से निकालकर सृष्टि में डाल देती हैं। क्यों डालती हैं? सृष्टि को बचाने के लिए। और वही भाग चैत्य सत्ता बनता है और उसका स्वरूप क्या है? प्रेम। यानी सृष्टि के अंदर प्रेम गया, इसलिए वो मृत्यु के अंदर से खींच करके ला रहा है मैटर को, लाइफ को, माइंड को, अभिप्सा को। दिस एक्सप्लेन्स जो विज्ञान में एक्सप्लेन नहीं है। विज्ञान में क्या अनएक्सप्लेन्ड है? कि केओस होना चाहिए था, ऑर्डर कैसे है ना। ओरिजिनली अगर आप जितना सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाएंगे आप उसको नियम बंद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर कैसे आया ये पार्टिकल्स के रैंडम डांस में? तो ऑर्डर कैसे आता है? जब कोई चीज जोड़ती है, वह शक्ति जो नृत्य कर रहे पार्टिकल्स को निकालती है बीज की तरह अंधकार से, उनको जोड़ती है और उनसे जोड़ 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 के इलेक्ट्रिकल चार्जेस से, उनके घात संघात से अणु बनाती है, मॉलिक्यूल्स बनाती है, फिजिकल बॉडी बनाती है, फिर उसके अंदर से प्राण को जोड़ देती है, प्राण के साथ मन को जोड़ देती है, नाना प्रकार के जीवन उन सबको जोड़ करके आगे ले जा रही है, वो प्रेम है। तो सावित्री बताती हैं कि ऑलरेडी मैं तुमको हरा चुकी हूँ, देखो तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो रहा है। तो भयभीत होता है, कहता हाँ वो तो है, जब से प्रेम आया है संसार में खलबली हुई है, प्रेम नहीं आता तो सब ठीक था, सब मेरी शांति से सो रहे थे, आपने तो हमारी शांति भंग कर दी। कहाँ? सावित्री कहती यस, मैं तो यही करने आई हूं, मृत्यु की शांति को भंग करके मैं वहां शिव का की शांति को स्थापित करना चाहती हूं। तो जो लास्ट पार्ट है वो प्रेम और मृत्यु का संवाद, वाद संवाद, और अंत में मृत्यु के ऊपर सावित्री की विजय, जो ओरिजिनल स्टोरी है। ओरिजिनल स्टोरी से अंत हो जाती है, सत्यवान चले जाते हैं। श्री अरविंद, क्योंकि अब वो आगे की भी चीज बता रहे हैं, तो वो आगे का बताते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है। प्रेम की ही विजय होगी और वो जो लास्ट विक्ट्री होगी लव की, उसके परिणाम स्वरूप एक नई सृष्टि की रचना होगी, मनुष्य के अंदर से एक दिव्य मानवता जन्म लेगी जो पूरे संसार को प्रेम के आधार पर चलाएगी। अभी डिवीजन के आधार पर चलता है। तो सावित्री से कम तीन चीजें तो सीधी की सीधी हम लोग सीख सकते हैं। पहला, भाग्य को जीता जा सकता है, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि विशफुल थिंकिंग से, ये कोई वो किताब नहीं है दी सीक्रेट की जो हम सोचेंगे यूनिवर्स को इंस्पायर करके क्रिएट कर देगा। इतना सरल होता तब तो मिडास टच वाली बात है, पर जीता जा, एक उपाय है भाग्य को बदलने का। और वो उपाय कहाँ है? सावित्री बताती, तुम्हारे अंदर है। कहाँ? तुम्हारे अंदर। तुम्हारे ही अंदर एक भाग है जो स्वयं को परात्पर से कनेक्ट कर सकता है, जो मृत्यु को, जो भाग्य को बदल सकते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर से। ए प्रेयर ए मास्टर एक्ट ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंट फोर्स, then miracle is made the common rule. One mighty deed can change the course of things. A lonely thought becomes omnipotent. ये है हमारे अंदर, ये चाबी है। अच्छा, भाग्य बदला जा सकता है, चाबी प्राप्त करनी है। दूसरा सत्य जो बताते हैं और वो ये है कि जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है वो कौन सी है? प्रेम, ओरिजिनल पावर। तो आप ज्ञान से चले जाओ, ये चीज श्रीमद् भगवत गीता हिंट करती है। अगर आप गीता को 6-6-6 चैप्टर के भाग में डिवाइड करो तो पहले 6 चैप्टर में गीता का सार है, लेकिन अंत में थोड़ा प्रेम का टच है। नेक्स्ट 6 चैप्टर, लेकिन प्राइमरीली ज्ञान है, सांख्य योगा नाम ये सब है उसमें। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर कर्म प्रधान है, अब प्रेम थोड़ा और आने लगा है। लास्ट 6 चैप्टर्स वही चीज है, इलेबोरेटेड है, लेकिन अब वो प्रेम भक्ति प्रधान है। ये अपने आप देखोगे क्या, और कल्मिनेटिंग क्राउन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम रजा। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा सत्य है कि प्रेम, लेकिन अगेन कौन सा प्रेम? बट फर्स्ट ह्यूमन लव मस्ट चेंज इट्स वेज टू वेज डिवाइन. वो प्रेम एक बीज रूप में है लेकिन वो अशुद्ध सोना है. अगर आप 10 कैरेट का गोल्ड है या 12 कैरेट का गोल्ड है तो उसमें उतना मूल्य नहीं है. आपको बोल ले गोल्ड है या पानी चढ़ा गोल्ड है, इट मस्ट बी वो प्योर गोल्ड हमारे अंदर है, उसको हमको शुद्ध करके ह्यूमन लव हैज टू बी ट्रांसम्यूटेड इनटू डिवाइन लव, तब उसके अंदर वो ओरिजिनल पावर हमारे हम उसको जानेंगे, उसका टच क्या होता है, वो कैसे उसमें वो शक्ति होती है. माँ कहती है लव इज दी हैज दी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इवन प्योरिफिकेशन. कहती प्योरिटी डिस्ट्रॉय करके बिल्ड करती है, लव कैन ट्रांसफॉर्म विदाउट डिस्ट्रक्शन. बिना विनाश किए वो चेंज कर सकती चीजों को. तीसरा, हम अकेले नहीं हैं, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण हैं और सत्यवान के साथ सावित्री है. प्रत्येक सत्यवान के साथ, क्योंकि सत्यवान एक रिप्रेजेंटेशन है. किसका? इज द रिप्रेजेंटेटिव सोल इन मैन, जो अचित अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ है जंगल में, लेकिन वो सत्य को धारण करता है, सत्यवान. और जहां जहां सत्यवान है, सत्यवान कौन है? जो सत्य को धारण करता है. एक हम लाइन और जोड़ दें कि सत्य की अभिप्सा करता है नहीं उसके पास, अंदर में छिपा हुआ है लेकिन वो खोज रहा है. वो अचित अंधकार से बाहर निकलना चाहता है. अचित अंधकार अज्ञान में भी डिवाइन मदर है उसके साथ में, लेकिन उसको मालूम नहीं है, वो तो कोस रहा है. लेकिन वही सत्यवान जब कॉन्शियस हो जाता है तब हम क्या जानते हैं? बहुत बड़ा सत्य है कि एक निर्वैयक्तिक सत्ता नहीं है संसार के पीछे. अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षर ब्रह्म परमम के परे श्री कृष्ण बताते हैं पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम के साथ में कौन है? सर्वेश्वरी है, आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है, परमा माँ है. तो वो हमारे साथ साथ चलती है, हम अकेले नहीं है. ये कितनी बड़ी बात है, इसको जान लेना. चौथी जो बात इसमें आती है, ऐसा कोई अंधकार नहीं जिसका अंत प्रकाश ना हो, कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो. मृत्यु क्या है? इट इज ए पैसेज टुवर्ड्स ए ग्रेटर डॉन. मृत्यु ओरिजिनल ट्रुथ नहीं है, इमोर्टैलिटी ओरिजिनल ट्रुथ है. मृत्यु एक पैसेज है, एक प्रतीति है जिसके द्वार से हमको गुजरना पड़ता है. होती ना प्रतीति, आप देखो, आप टनल से जब ट्रेन गुजरती है, अनुभव किया है ना, कई बार किया होगा, तो क्या होता है? सामान का ध्यान रखना उस समय. प्रतीति क्या होती है? प्रतीति होती है कि कोई नहीं है. घुप टनल से गुजरो, लंबी वाली महाराष्ट्र में बहुत सारी हैं. आपको प्रतीति, अगर लाइट ऑन नहीं करोगे, प्रतीति यह होगी कि कोई नहीं है हमारे पास. आपका अपना शरीर है कि नहीं, उसके लिए भी थोड़ा है ना. जब लाइट आती है, अरे सब तो साथ में थे. तो अंधकार प्रतीति है, ओरिजिनल ट्रुथ नहीं है. सूर्य कभी छिपता नहीं है, धरती उसकी ओर मुख मोड़ लेती है. तो ये और बहुत सारे अन्य सत्य जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि सावित्री के अंदर से हैं, जो सारे संसार को प्रकाश, आशा, प्रेम, सौंदर्य से भर सकते हैं. आज हम लोग केवल ऑथर्स नोट पढ़ेंगे. ऑथर कौन है? श्री अरविंद हैं. श्री अरविंद लिख रहे हैं ऑथर्स नोट. ये ओरिजिनली एक पत्र के उत्तर में लिखा गया था कि ये क्या है, कौन है. तो श्री अरविंद ने उसको ऑथर्स नोट के रूप में नहीं लिखा था. वो छुपन छुपाई खेलते हैं कि मैं लिख दिया, अभी तुम फिगर आउट करो. अब सावित्री के साथ कुंजी भी दे देते तो मजा क्या आता. इस लाइक भगवान छिप गए, फिर बोल रहे कि नहीं नहीं देखो मैं यहाँ हूँ निकल करके, क्या मजा है खेल का. तो उन्होंने सावित्री में स्वयं को और सीमा को छिपा दिया और कहा आप ढूंढो. तो ये मेंटल लाइट से मिलेगा नहीं. कहाँ, कौन से प्रकाश में मिलेंगे? चैत्य के प्रकाश में. तब आपको देखेंगे, अरे आप छिपे कहाँ हो, सब जगह तो हो, छिपने का नाटक मत करो. तो अब ये ऑथर्स नोट भी ऐसे ही आया. श्री अरविंद ने सावित्री के साथ नहीं, इसकी पैसेजेस छपना प्रारंभ हो गए थे 1943 से. श्री अरविंद सर्किल में छपते थे, जो पाठ मंदिर से निकलती थी. फिर कुछ एक अमल किरण ने देखे, श्री अरविंद उनको भेजते थे, और नलिनी दा के हाथ से सील्ड एनवेलप जाता था. तो अमल किरण बताते हैं कि नलिनी दा डिवाइन पोस्टमैन, वो ले जाके सबको चिट्ठियाँ देना उनका काम था. वन ऑफ द वर्क. तो जब वो देते थे अमल किरण को तो नलिनीता रुकते थे. तो अमल किरण कहते हैं कि उनको लगता होगा कि ऐसा क्या है जो ऐसे शेरविन बड़ी बड़ी चिट्ठी लिख के क्या है जो मुझे भेज रहे हैं. मानो वो पजल्ड से जानना चाह रहे हो कि है क्या. तो सावित्री थी. तो ऐसे शुरू हुआ पार्ट वन श्री अरविंद 1950 के समय ही प्रकट हो गया. पार्ट टू और थ्री 51 में प्रकट हुआ. फिर 54 में कंप्लीट एक माता जी के उससे हुआ. फिर 72 में SABCL के साथ आया. दिस इज द होल स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ सावित्री. श्री अरविंद ने इस पे बार बार प्रयास किया क्योंकि वो परफेक्ट परफेक्शन को लाना चाहते थे. वो चाहते थे कि मांत्रिक वाणी में थोड़ा सा भी कोई दूसरी मिक्सचर ना हो, क्योंकि वो ट्रुथ को तो वो जानते हैं लेकिन ब्रेन हैंड माउथ बाद में उन्होंने इसको डिक्टेट करते थे, तो वो सब बिल्कुल पूरी तरह परफेक्टली रिस्पॉन्ड करें ताकि जो बाहर आए वो बिल्कुल परफेक्ट परफेक्शन से हैं. और लास्ट में वो कहते हैं नाउ आई एम सेटिस्फाइड. क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि इट इज बाय एंड लार्ज थ्रू एंड थ्रू लार्जली एन ओवर माइंड इन्फ्लुएंस. मनुष्य की वाणी वहीं तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती है. सुप्रामेंटल विजन को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं वाणी में, वो तो दूसरी लैंग्वेज होगी. सुप्रामेंटल बींग्स ऐसे बात ही नहीं करेंगे जैसे हम लोग करते हैं. वो देखेंगे, मुस्कुराएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्यों मुस्कुरा रहे या एक फूल उठाएंगे या फूल देंगे आपको पता चल जाएगा इस फूल का मतलब क्या है. ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ माइंड थॉट स्पीच खत्म हो जाएगा. अब बोलेंगे भी तो उसमें अभी तो लोग क्या होते हैं ना, शब्द को पकड़ते हैं तो कितनी कंफ्यूजन होती है. शब्द ब्रिज होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अभी उल्टा होता है. दो लोगों ने बात में बात करना शुरू किया तो कोई ना कोई बात निकलेगी जो दूसरे को उस पर लड़ाई का कारण बन जाएगी. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि शब्द के माध्यम से लोग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को टच कर देंगे. तो ये सब सावित्री से हम सब, और बहुत कुछ है, ये तो इन्फिनिट ओशन है. तो हम लोग प्रारंभ करेंगे ऑथर्स नोट से. द टेल ऑफ सत्यवान एंड सावित्री इज रिसाइटेड इन द महाभारता एज ए स्टोरी ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ. कंजुगल लव यानी धरती का प्रेम, मानवीय प्रेम, पति पत्नी का प्रेम. इसमें भी शक्ति होती है हाँ, लेकिन तुम अगर चेंज करो. ओरिजिनली जो सती है ना सावित्री, तो सती क्या होता है, जो सत्य से जुड़ा है. सती का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आग में चढ़ गई. अंदर की जिसने सत्य की ज्वाला को जगाई हुई है और जिसके प्रेम में सत्य है, ये सती है. द्रौपदी भी सती है, मंदोदरी भी सती है, जस्ट इमेजिन. अनुसुईया भी सती है, ये आप सोचो. सावित्री भी सती है जिसके प्रेम में ट्रूथ है अंदर में. वो ट्रूथ से जो प्रेम निकलता है वो सत्य होता है. तो कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ, जो मृत्यु को जीत सकता है. बट दिस लीजेंड इज एज शोन बाय मेनी फीचर्स ऑफ द ह्यूमन टेल वन ऑफ द मेनी सिंबॉलिक मिथ्स ऑफ द वैदिक साइकिल. बहुत सारी कहानियां हैं वैदिक साइकिल में जो वास्तव में मिथक यानी मिथ्या नहीं है, सांकेतिक है. दोनों में डिफरेंस है. यानी वो कहानी फिजिकली हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सत्य छिपा है, उसको पकड़ना चाहिए. जैसे आप पता नहीं ये लोग करते कि नहीं, हम नॉर्थ इंडिया में ऐसे एक शरद पूर्णिमा होती है, तो शरद पूर्णिमा में आप खीर कैसे खाते हैं पता है किसी को? आप खीर को चंद्रमा के नीचे रख देते हैं और कहा जाता है कि इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है. अब बोलो क्या इसके पीछे संकेत है? पूर्ण चंद्र क्या है? पूर्ण चंद्र इज दी फुल मून इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इन इट्स फुलनेस. चंद्रमा स्पिरिचुअल माइंड का सिंबल है, इसीलिए वो वैक्सिंग एंड वेनिंग है. क्योंकि सूर्य में सुप्रामेंटल ट्रूथ में ही आपको उसकी फुलनेस मिलेगी, तब तक वो कॉन्शियसनेस वैक्सिंग और वेनिंग रहेगी. लेकिन शिव ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है तो कंप्लीटली कभी जाएगी नहीं, क्योंकि इटरनल इज अपहोल्डिंग इट. तो बड़ी सिंपल संकेत है. तो जब फुलनेस पे आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जब परवान चढ़ेगी, उसमें भी एक विशेष दिन शरद पूर्णिमा जब सूर्य भी ढका हुआ है, फिर आप मून का ही प्रकाश है जो पोषित कर रहा है, तब जब आप खीर क्या है, खीर सागर मिल्क ऑफ नॉलेज, तब आप जब ज्ञान के अंदर क्या चीज का समावेश करेंगे, सोमरस, डिलाइट, चंद्रमा सोमरस के देवता हैं। जब ज्ञान के साथ आनंद मिल जाएगा तो उसका स्वाद अनुपम होगा। अब देखिए कितना बढ़िया सिंबल है, कैसे प्रिजर्व किया गया, जनश्रुति के द्वारा और एक्शन के द्वारा। किसी किसी को ये डिकोड हो जाता है, अरे इतना सुंदर है। फिर आप ये जरूरी नहीं कि खीर रखें ना रखें, पर आप समझ गए। तो इस प्रकार से ये मिथ है, सिंबॉलिक मिथ टेल है, सिंबॉलिक मिथ्स ऑफ द वैदिक साइकिल। अब उस समय लोग इस प्रकार से प्रेजेंट करते थे, अभी उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं क्यों ऐसे प्रेजेंट करते थे। सत्यवान कौन है, सिंबल क्या है, इज द सोल ऑफ मैन, सोल कैरिंग द डिवाइन ट्रूथ ऑफ बीइंग विद इन इटसेल्फ बट डिसेंडेड इनटू द ग्रिप ऑफ डेथ एंड इग्नोरेंस। हम सबके अंदर सत्य है लेकिन हम अज्ञान अंधकार में आ गए हैं, तो हम अपने ही सत्य को भूल गए, टनल से जा रहे हैं, टॉर्च लाइट अंदर है, हम पूछ रहे हैं भैया जरा थोड़ा अग्नि दे दो, अग्नि दे दो, लालटेन लेके जा रहे हैं घर घर पे ठक ठक, थोड़ी अग्नि है, अग्नि है, नहीं है नहीं है। कोई कहता है मूर्ख लालटेन लेके क्या जा रहा है, अग्नि तेरे पास है। तो वैसे ही हम सत्यवान हैं, भूल गए हैं कि सारी अग्नि हमारे ही अंदर है। सावित्री इज द डिवाइन वर्ड, डॉटर ऑफ द सन, डिवाइन वर्ड, वर्ड यानी शब्द। शब्द क्या है, वो स्पंदन है, शब्द के अंदर जो शक्ति होती है, अर्थ बाद में आते हैं लेकिन उसके अंदर ध्वनि और ध्वनि का स्पंदन। आप देखिए महाभारत युद्ध होने के पहले क्या होता है, कोई भी युद्ध होने के पहले पहले क्या करते थे, शंख ध्वनि, गांडीव की टंकार, सुन के ही लोगों को लगता था अरे अर्जुन कहीं है, भागो भागो भागो, गांडीव की टंकार, भयभीत हो जाते थे योद्धा। श्री कृष्ण का पांचजन्य, लोग कहते थे कोई बहुत बड़ी विजय या तो हो गई या होने वाली है, श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो ये ध्वनि, अभी भी ध्वनि, ध्वनि का कितना, और ध्वनि के साथ उस ध्वनि को जब आप मिक्स और मैच करते हैं, जैसे आजकल डीजे डिस्टॉर्ट कर देते हैं चीजों को, ओरिजिनल मिक्सिंग मैचिंग ध्वनियों का कहां है, वर्ड फॉर्मेशन में। ध्वनियों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। वृत्र, वृत्र, वृत्र क्या है, आप देखिए वृ, टेयर कर रहा है कोई, फाड़ रहा है कोई चीज को, किसको कहते हैं, असुर भी है और वो जेकॉल भी है जो चीर करके खा लेता है। अब देखिए एक शब्द से, ध्वनि से ही आपको, तो ध्वनि जुड़ करके शब्द बनते हैं। मानव मन उसके साथ अर्थ जोड़ देता है लेकिन अर्थ ओरिजिनल नहीं है। आप देखिए कि अलग अलग भाषाओं में सेम ध्वनियों के अलग मतलब हैं। तो ये ध्वनि और ध्वनियों के संगम से शब्द बनता है, शब्द के अंदर अर्थ जुड़ते हैं लेकिन ध्वनि के पहले क्या है, चेतना की अवस्था। आप ध्वनि क्यों यूज करते हो, आप कुछ समझाना चाह रहे हो ना, कोई मौन है बोले मैं मौन रहूंगा, उसको किसी को कहना है कि तू जा तो कैसे कहेगा, कहेगा हम्म, और किसी को कहना है तू आ तो कहेगा हम्म, है ना, वही ध्वनि के माध्यम से आ जा। तो उसके पीछे क्या है, भाव है। तो मूल क्या है, चेतना की अवस्था। तो चेतना की अवस्था को स्पंदन के माध्यम से अभिव्यक्त करना ये शब्द है, और जब वो परफेक्टली स्पंदन को, उच्च चेतना को जब वो स्पंदन के माध्यम से आप प्रकट करते हैं तो वो मंत्र होता है। वो कहां पाया जाता है मंत्र, हृदय की गहराइयों में। और जब उसी निम्न चेतना को जब आप ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो क्या होता है, वो गाली होती है। और मंत्र क्या करता है, ऊपर उठाता है, और गाली क्या करती है, पतन की ओर ले जाती है। वही शब्द है, वही ध्वनियां हैं। माता जी कहती हैं अब्यूजिव लैंग्वेज इज स्पिरिचुअल सुसाइड। मुझे लगता है भारतवर्ष का एक पतन का कारण ये भी है, जो आधुनिक 100 ईयर्स में देखिए कई जगहों पर गालियों का प्रयोग, इट इज पतन की ओर ले जाता है आपको, स्पिरिचुअल सुसाइड है। और वहीं वही ध्वनियां आपको ऊपर उठा सकती है। तो ध्वनि का खेल है ये। तो यहां वो डिवाइन वर्ड है, डॉटर ऑफ द सन, सूर्य को ही अपने अंदर धारण किए हुए हैं। जब कोई भी पुत्री होती है उसका ओरिजिनल कौन होता है, पिता। पति में भी पिता को ढूंढ रही है, भाई में पिता को ढूंढ रही है, संसार में पिता को ढूंढ रही है, पिता के ही सिखाए हुए तरीके से वो अभी पति के घर में जाकर बनाने वाली है संसार को। वो शुरू में हस्बैंड बोलेगा ऐसे चलो वैसे चलो, सासू जी ये सब सुनेगी, बाद में मेरे घर में मैंने सीखा था, वो अल्टीमेटली आएगी आज नहीं तो कल, ओरिजिनल मॉडल है। तो डॉटर ऑफ द सन, उसने उन्होंने इस सत्य को धारण किया है जो धीरे धीरे वो प्रकट करेंगी। गॉडेस ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, सूर्य सावित्री, गॉडेस मतलब वही ना केवल धारण करती है जो देती है, गॉड और गॉडेस क्यों कौन होते हैं, जो देते हैं, वही दे सकती है सत्य को, अन्यत्र नहीं मिल सकता है। तो देयरफॉर शी इज द गॉडेस ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ हु कम्स डाउन, लेकिन वो वहां नहीं खड़ी है, अंतर क्या है, जैसे सूर्य की किरणें धरती तक आती हैं, सूर्य वही है, तो सूर्य पुत्री सावित्री धरती तक आती हैं, प्रेमवश, हु कम्स डाउन एंड इज बॉर्न टू सेव, किसको बचाने के लिए, सत्यवान को बचाने के लिए। अश्वपति जो सावित्री के पिता हैं, द लॉर्ड ऑफ द हॉर्स, अश्वपति, हॉर्स पावर, अभी भी जब करना होता है किसी को दिखाना होता है शक्ति, तो आप घोड़े को पेंटिंग में बनाते हैं, तो वाइल्ड शक्ति, लोअर वाइटल, तो ऐसा घोड़ा बनेगा, प्योर डिवाइन फोर्स, तो व्हाइट हॉर्स, कल की अवतार आती है ना प्योर व्हाइट हॉर्स पे, तो अब कोई बोलेगा कल की अवतार तो अभी आके घोड़े पे चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो मोटरसाइकिल है, ये है वो है, घोड़े पे कौन चढ़ता है, तो कहेंगे अरे मूर्ख मैं उस घोड़े की बात नहीं, घोड़ा एक प्रतीक है, सो व्हाइट हॉर्स इज डिवाइन कॉन्शियसनेस। और तलवार, अब आज के युग में तलवार लेके कोई जाएगा, इट इज डिवाइन नॉलेज जो स्ले करती है, जैसे सुदर्शन चक्र, इट स्ले इज डार्कनेस। तो उसी प्रकार से अश्वपति, द लॉर्ड ऑफ द हॉर्स, हर ह्यूमन फादर इज द लॉर्ड ऑफ तपस्या, शक्ति जो तपस्या द्वारा, और तपस्या क्या है, वो नहीं जो हम लोग टेलीविजन और चैनल्स पे देखते हैं, ये कपड़ा पहन के, ये कमंडलो लेके, बगल में दान दक्षिणा की पेटी, देखो कैश देना, चेक नहीं, जीएसटी लगेगा, वो तपस्या नहीं है। तपस्या वो भी नहीं है, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, और सबको बता रहा हूं देखो मैंने 20 दिन भोजन नहीं किया, तो अहंकार है। ऐसा होता है कई बार, ऐसे ऐसे साधु, एक बार मैंने देखा कि इन्होंने 20 दिन खाना नहीं खाया, 21वें दिन पूरी बारात निकली, उनकी प्रोसेशन निकला, ये किसी ने रिनंसिएशन लिया, और वो बड़ा रिच आदमी था, तो उसने जितने भी रिनाउंस किए थे लोगों ने जिसको ज्वाइन कर रहा था वो, उनको उसने पार्टी दी एक जहाज के ऊपर। तो ये सब रिनंसी, ये सब तो दिखावा है। तो फिर व्हाट इज तपस्या, द कंसेंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडिवर, जब कोई भी ऊर्जा को आप आध्यात्मिक दिशा में मोड़ते हो, और इसलिए चाहे वो कर्म हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, कुछ भी आप प्रयास कर रहे हो, झाड़ू बुहारी हो, भोजन हो, उसमें आप उसको एक माध्यम बनाते हो कि ये मेरे इनर बीइंग को विकसित करे, डेवलप करे, आध्यात्मिक दिशा में ले जाए, तो वो तपस्या बन जाती है। इट इज नथिंग टू डू विथ समथिंग आउटसाइड, बट टू डू विथ इनसाइड। वेयर इज आंख मूंद के आप मेडिटेशन कर रहे हो, अंत में क्या निकलता है, रावण जैसा दशानन, क्यों, ईगो तो है, तो ये एटीट्यूड की बात है। दैट हेल्प्स अस टू राइज फ्रॉम द मॉर्टल टू द इमॉर्टल प्लेन्स। तप का परिणाम क्या होता है, ये नहीं कि लोग कितना आपको जानते हैं, देते हैं दान, ये सब नहीं है, तप किया जाता है अपनी चेतना के उत्थान के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। राइज फ्रॉम द मॉर्टल लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लोअर स्टेट में डिविजन है, डिस्कॉर्ड है, क्वारल है, एंगर है, इत्यादि इत्यादि है, कामना वासना ग्रीड, यही सब है। हायर स्टेट ऑफ प्राइड है। हायर स्टेट में क्या है, शांति है, समता है, सामंजस्य है, सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रकाश है, माधुर्य है, प्रेम है, यही डिफरेंस है। चॉइस इज अवर्स। द्युमत सेन, द्युमत सेन कौन है, सत्यवान के पिता, क्या है, वो अंधे भी हो गए, राज्य उन्होंने खो दिया है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो द्युमत सेन कौन है, द्यु प्रकाश, जो प्रकाश के, लॉर्ड ऑफ द शाइनिंग होस्ट, इंद्र जो देवताओं के देव, ऋग्वेद में इंद्र हैं देवताओं के देव, पुराणों में चेंज हो जाता है, तो देवों के देव, सहस्राक्ष सब और देख सकते हैं, ओरिजिनल जो वेदों में है, सहस्राक्षर है, यानी उनकी ग्लोबल कॉन्शियसनेस है। वो ज्ञान जब सीमित होता होता क्या होता है, नहीं मेरे, अब मेरे को चिंता है कि एक घंटे बाद मेरा क्या होने वाला है, तो क्या हो गया, केवल मेरे शरीर के साथ क्या होने वाला है, तो वो अज्ञान हो गया। लेकिन जो चेतना जैसे जैसे उत्थान होता है वो ग्लोबल सहस्राक्ष इंद्र की चेतना, तो वो दुमत्सेन यानी दी लॉर्ड ऑफ द शाइनिंग होस्ट। शाइनिंग होस्ट कौन है? देवता, फादर ऑफ सत्यवान इज द डिवाइन माइंड हियर फॉलन ब्लाइंड लूजिंग इट्स सेलेस्टियल किंगडम ऑफ विजन एंड थ्रू दैट लॉस इट्स किंगडम ऑफ ग्लोरी। हम लोग, वो किसी सूफी मिस्टिक ने कहा है कि मैंने यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा, और कभी तो मैंने उसको तख्त ताज पे बैठे देखा और कभी कासा लिए खड़ा देखा, भिखारी का कोटा लेकर कि भैया कुछ पैसे दे दो। तो उसी प्रकार से डिवाइन माइंड जिसके अंदर सब कुछ है ज्ञान, वो यहां इग्नोरेंटली भटक रहा है सब कुछ जान के अज्ञान में। तो ग्लोरी स्टिल आगे बता रहे हैं कि दिस नॉट ए मियर एलिजरी, ये केवल एक सांकेतिक कहानी मत समझ लेना। द कैरेक्टर्स आर नॉट पर्सोनिफाइड क्वालिटीज कि अच्छा ये मतलब ये क्वालिटी वो क्वालिटी, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना गुरु कौन है, गुरु एक तत्व है। सच है, गुरु एक तत्व है, भगवान का एक साइड है जो टीचर के रूप में प्रकट होता है। लेकिन ये कह देना कि तब जो बाहरी गुरु है उसका कोई सेंस नहीं है, ये मूर्खता है। तो इसलिए ये दोनों ट्रूथ हैं, पैराडॉक्सिकल ट्रूथ हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये केवल एक एलजरी नहीं है, बट इनकारनेशंस और इमिनेशंस ऑफ लिविंग एंड कॉन्शियस फोर्सेस विद होम वी कैन एंटर इन टू कंक्रीट टच एंड दे टेक ह्यूमन बॉडीज इन ऑर्डर टू हेल्प मैन एंड शो हिम द वे फ्रॉम हिज मॉर्टल स्टेट टू ए डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड इमॉर्टल लाइफ। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, कौन है? भगवान है। कहां है? हमारे अंदर है। गुरु उनका एक एस्पेक्ट है, सच है, वेरी गुड। तो बाहर में गुरु कौन है? वो जो इस सत्य को कॉन्शियसली, वही गुरु रूप लेते हैं, हमारी तरह आते हैं। क्यों? हमारे लिए सरल बनाने के लिए। अंदर जाके मिल जाएंगे, पर अंदर जाने का सिखाएगा कौन? कैसे जाओगे? अंदर में जाओगे तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। कौन तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा? कौन तुम्हें अंधकार में हाथ पकड़ के ले जाएगा? तो अंदर भी गुरु हैं, बाहर भी जब वो रूप लेते हैं तब ये इट बिकम्स ए डबल ब्यूटी। इसीलिए गुरु को सरेंडर कहा गया है, इज द सरेंडर ऑफ सरेंडर। श्री कृष्ण श्री अरविंद से ये प्रश्न पूछा गया तो श्री अरविंद कहते हैं कि यस, क्योंकि जब हम बाहर गुरु को सरेंडर करते हैं तो हम अंदर तो सरेंडर किया ही हुआ है, लेकिन हमारा बाहरी बीइंग और हमारा बाहरी पर्सनालिटी, हमारा शरीर, बाहरी मन, ये सब पार्टिसिपेट करता है इन द जॉय ऑफ सरेंडर। तो शेरविंद के योग में तो ये करना ही, क्योंकि ये शेरविंद का योग इंटीग्रल योग है, वो केवल अंदर का योग नहीं है, इसमें सब बाहर। इनफैक्ट शेरविंद कहते हैं कि अगर बाहर की चेतना नहीं चेंज होती है तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इनर भी है, बाहर भी है। तो सावित्री सत्यवान एक शाश्वत सत्य है, लेकिन वो मानव रूप धारण करते हैं, दोनों आते हैं। सत्यवान रेस्क्यूड फ्रॉम इग्नोरेंस, और जितने सत्यवान इग्नोरेंस से बचते चले जाते हैं वो सब सावित्री के किसी ना किसी सत्य को धारण करके संसार में आते हैं। क्यों? ताकि मनुष्य को सहायता मिले मर्त जीवन से अमृतत्व की ओर जाने के लिए, मिथ्यात्व की जगह सत्य को प्रकट करने के लिए, अंधकार की जगह प्रकाश को वर्ण करने के लिए, और अविद्या, मृत्यु, मिथ्यात्व, अचेतनता, इन सब की जगह संसार, वैमनस्य, इन सब की जगह प्रेम को स्थापित करने के लिए। हम लोग यहां रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते। नमस्ते।